अनेक दिनों से उसके अंतर्गत आज भगवान ऋषभ देव का दसवां भाव अर्थात नौ भाव से राजा महाबल की पर्याय से लेकर सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र तक की बातों को आपने श्रवण किया है। करते करते सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र की 33 सागर की आयु सर्वसौख्यदम केवल मेक कल्याणम याचे हम देव देही में। इस मंगलाचरण के माध्यम से कहा है तीर्थंकर भगवंतों को समस्त सुख सौख्य प्रदान करने वाले पांचों कल्याणकों की मैं वंदना करता हूँ। हे देव, मुझे केवल एक कल्याण प्रदान कीजिए, ऐसी मैं याचना करता हूँ। इन्हीं भावों को आपने रविंद्र जैन के गीत के माध्यम से भी कई बार गाया और सुना होगा। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। इसी बात को आज हमने यहाँ पर एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से ऋषभ देव चरितम के दसवें अध्याय का शुभारंभ किया कि ज्ञानमती माता जी कहती हैं, हे भगवान, आपने पांचों कल्याणकों को प्राप्त किया और मुझे केवल एक कल्याण दे दीजिए, अर्थात एक कल्याणक को भी अगर मैं प्राप्त हो गया, माने एक गर्भ कल्याणक भी प्राप्त हो गया। हमने जिसके गर्भ में जन्म लिया वह माँ अगर 16 सपने देख लेती है तो समझो कि हमारा गर्भ कल्याणक हो गया। और निश्चित है कि जिसका गर्भ कल्याणक हो जाता है उसका निर्वाण कल्याणक तो होता ही है, और जन्म दीक्षा केवल ज्ञान उसके बीच में आ ही जाते हैं। ऐसे गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, इन पांचों कल्याणकों को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर भगवंतों की श्रृंखला में वर्तमान कर्मयुग की आदि में प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव हुए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड में भोग भूमि का तृतीय काल समाप्त होने वाला था। 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर महाराजा नाभिराय हुए थे। उस समय इंद्र ने उत्तम कुल में जन्मी कन्या मरुदेवी के साथ महाराजा नाभिराय का विवाहोत्सव बड़ी विभूति के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न कराया था। मरुदेवी और नाभिराज से अलंकृत पवित्र स्थान में उनके पुण्य के द्वारा बार बार बुलाए हुए इंद्र ने एक नगरी की रचना की। इंद्र की आज्ञा से बड़े बड़े उत्साही देवों ने उसे स्वर्गपुरी के समान अत्यंत सुंदर बनाकर उसका नाम रखा अयोध्या। अयोध्या अनादिकाल से है, लेकिन जब जब तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं तब तब इंद्र आकर उस अयोध्या की खोज करता है और उस अयोध्या नगरी के नीचे धरती में कमल के चिन्ह देखे जाते हैं। मंगल कलश वहाँ पर देखा जाता है और उस मंगल कलश के ऊपर ही उस धरती पर अयोध्या नगरी पुनः पुनः नए रूप में बसाई जाती है। युग की आदि में भी, तृतीय काल के अंत में भी बसाई गई। अनंतर इंद्र ने शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्न में हर्षित होकर के उस नगरी की शुद्धि करी पुण्यावाचन किया। उसी समय आनंदित हो महाराजा नाभिराय ने मरुदेवी के साथ अयोध्या नगरी में निवास करना प्रारंभ किया। यानी सर्वतोभद्र महल आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है कि धरती पर तब भोग भूमि की व्यवस्था चल रही थी, धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया। तब उसमें से आलियांग नाम का, आलियांग जाति का जो कल्प वृक्ष था, वही सर्वतोभद्र महल के रूप में परिणत हो गया। 81 मंजिल का सर्वतोभद्र महल बन गया और उस सर्वतोभद्र महल में महाराजा नाभिराय, महारावी रानी मरुदेवी को पुण्यावाचन के साथ, वास्तु शुद्धि के साथ वास्तु विधान करके, और इंद्र ने सर्वतोभद्र महल में दोनों को प्रवेश कराया। और इन दोनों महान आत्माओं के सर्वज्ञ ऋषभ देव पुत्र जन्म लेंगे ये समझ करके इंद्र ने अभिषेक पूर्वक उन नाभि राय और मरुदेवी की महती पूजा की। ये सारा वर्णन पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस ऋषभदेव चरितम नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत ही विशद रूप में लिखा है। आप जरूर पढ़ें, अपने मंदिर जी में इसको रखें। और इसकी हिंदी टीका भी है, ब्राह्मी टीका। भगवान ऋषभदेव की पुत्री थी ब्राह्मी, उन ब्राह्मी माता के नाम पर ऋषभदेव चरितम की हिंदी टीका का नाम रखा गया ब्राह्मी टीका। तो आषाढ़ बदी द्वितीया के दिन ऋषभदेव भगवान होने वाले ऋषभदेव भगवान सर्वार्थ सिद्ध के अहिमिंद्र पद से 33 सागर की आयु को पूर्ण करके वहाँ से निकलते हैं, च्युत होते हैं और आकर के मरुदेवी के गर्भ में जन्म धारण कर लेते हैं, यानी मरुदेवी के गर्भ में आ जाते हैं। और उसी दिन वो माता बनने वाली मरुदेवी रात्रि के पिछले पहर में 16 स्वप्नों को देखती हैं, अपने पति महाराजा नाभिराय से राजमहल में, राजसभा में जाकर के उन स्वप्नों का फल पूछती हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपके पवित्र गर्भ में तीर्थंकर अवतीर्ण हो चुके हैं। अब देखो, इस पवित्र गर्भ की विशेषता ये थी कि जिन बालक को गर्भ में स्थित होने के बाद भी माता को रंच मात्र कष्ट नहीं हुआ, ना तो माता के पेट की त्रिवली नष्ट हुई, ना माता का उदर बढ़ा और ना मुख पर किसी प्रकार का पीलापन या किसी प्रकार की कमजोरी आई, बल्कि वो दिन पर दिन अपनी बल शक्ति बुद्धि को वृद्धिंगति कर रही थी। तो नौवां महीना निकट आने पर देवियों ने अनेकानेक प्रश्नों को भी पूछ करके माता का मनोरंजन किया। वे सबके जटिल से जटिल, कुटिल से कुटिल प्रश्नों के उत्तर देकर अपने ज्ञान का परिचय और अपने गर्भ में स्थित तीर्थंकर बालक के गुणों का परिचय प्रदान कर रही थी। चैत्र कृष्णा नवमी की तिथि आई और इसी अयोध्या नगरी में मरुदेवी ने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। पूरा स्वर्ग उतर करके मध्यलोक में धरती पर आ गया। सबने जन्म कल्याणक मनाया। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक हुआ। दूज के चांद की तरह तीर्थंकर बालक बढ़ते गए। युवावस्था होने पर यशस्वती और सुनंदा नाम की दो राजकन्याओं से उनका विवाह इंद्र ने और महाराजा नाभि राय ने मिलकर किया। उन दोनों रानियों से 101 पुत्र और 2 कन्याओं का जन्म हुआ। भरत बाहुबली आदि पुत्र हुए, यानी यशस्वती रानी ने भरत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या, 99 पुत्र और 1 कन्या ब्राह्मी को जन्म दिया। और सुनंदा नाम की रानी ने 1 बाहुबली पुत्र और सुंदरी नाम की कन्या को जन्म दिया। ऐसे 101 पुत्र और 2 पुत्रियों के जनक सारे संसार के पिता त्रैलोक्य पति बन करके भगवान ऋषभदेव ने प्रजा को असीम असी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन सट क्रियाओं को सिखाया। क्योंकि भोग भूमि का अंत हो रहा था, कर्म भूमि में जीवन जीने की कला सिखाई। अपनी पुत्रियों को ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि के माध्यम से विद्या दान दिया। पुत्रों को सारी कलाओं में विद्याओं में निपुण किया। राजाओं को राजनीति सिखाई। ये सब करते 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 83 लाख वर्ष पूर्व का काल उनका अयोध्या में राजकाज में निकल गया। तब एक दिन सौधर्मिंद्र को चिंतन होता है, चिंता करते हैं कि भगवान धर्मतीर्थ का प्रवर्तन कब करेंगे। और तब राजसभा में एक नीलांजना नाम की अप्सरा को वे उपस्थित करते हैं, जिसकी आयु बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। वह अप्सरा नृत्य करते करते वहीं आयु की उसकी समाप्ति हो जाती है। तुरंत दूसरी अप्सरा आती है, लेकिन भगवान अपने अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं। उसी समय उनको वैराग्य हो जाता है। वह दिन भी चैत्र कृष्णा नवमी का ही था, अर्थात भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक चैत्रवदी नवमी को ही हुआ। उन्होंने 6 माह का योग धारण किया। पुनः 6 महीने तक घूमते रहे आहार चर्या के लिए। तब हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने उन्हें प्रथम आहार इक्षु रस का देकर और दान तीर्थ के प्रवर्तक का पद प्राप्त किया। उसके बाद तपस्या करते करते 1000 साल की तपस्या के बाद भगवान को फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में भगवान ने दीक्षा लिया था। प्रयाग के निकट ही पुरीम तालपुर नाम के उद्यान में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और वहाँ पुरीम तालपुर के राजा वृषभसेन थे, जिनको भगवान के पुत्र होने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने जाकर भगवान के समोसरण में दीक्षा ले ली। वे प्रथम गणधर बन गए। भगवान के 84 गणधर थे। प्रथम गणधर वृषभसेन बने। और उसी समय राजा भरत अयोध्या से वहाँ पहुँचे। उनको प्रमुख श्रोता का पद मिल जाता है। और ब्राह्मी और सुंदरी ने जाकर प्रथम आरिका दीक्षा ली, तो उनमें से ब्राह्मी प्रथम गणिनी बन गई, सुंदरी प्रथम आरिका बन गई। ऐसा भगवान का जीवन रहा। तपस्या करते करते उन्होंने माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, अर्थात 4 घातिया कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्राप्त किया था और अघातिया कर्मों का भी नाश कर दिया, तो उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसे पंच कल्याणक को प्राप्त भगवान जहाँ जगत पूज्य बन गए, वहीं उनके पंच कल्याणक की तिथियाँ भी जगत पूज्य बन गई। अभी आगे फाल्गुन मास में फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक आएगा। तब माता जी कहती हैं कि वह प्रथम युग की प्रथम देशना का दिवस बन गया। प्रथम दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी और सभी ने उसका पान किया। आज इस व्याख्यान माला के अंतर्गत ऋषभदेव चरितम ग्रंथ का मैंने आपको परिचय कराया। ऐसे तो भगवान ऋषभदेव के बारे में आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरा माध्यम था कि भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर 15 दिन की हम व्याख्यान माला रखें। 15 दिन की बजाय ये 20 दिन की व्याख्यान माला हुई और इसके माध्यम से हमने ऋषभदेव चरितम का जो अध्ययन किया, बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है। सभी को एक बार इसका अध्ययन अवश्यमेव करना है। जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको प्राप्त हो जाएगा। संतों को ज्ञान दान में दें और मंदिरों के अंदर पुस्तकालय में रख करके सभी के लिए स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। देवलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की, श्री ऋषभदेव चरितम ग्रंथ की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए।